ओम शांति। बचपन में हमने एक स्टोरी सुनी थी, द फाइव वाइस मैन, जिसमें पांच व्यक्ति होते जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते और वो एक बार जंगल की यात्रा करने जाते, द फाइव वाइस मैन। और जंगल के बीचों बीच जब पहुंचते हैं तो उनको ऐसा लगता है हम खो गए, अब कहां जाए। तो जो पहला व्यक्ति होता है वो कहता है, माय इंट्यूशन, मेरी अंतर प्रेरणा कह रही है कि मैं राइट साइड जाऊं, क्योंकि राइट मतलब राइटनेस। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड जाना चाहिए। तीसरा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पीछे लौट कर चले जाना चाहिए। चौथा कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए। और पांचवा कहता है, तुम सब गलत हो, यहां जो ये पेड़ है ना, मुझे ऐसा लगता है इस पेड़ पर मैं चढ़ जाऊं और यहां से देखूं कि इस जंगल से बाहर निकलने का शॉर्टेस्ट वे, सबसे आसान, सबसे नजदीक वाला कौन सा रास्ता है। कहानी आगे बढ़ती है और ये जो पांचवा है ये ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर उसे दिखाई देने लगता है कि इस जंगल से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका, रास्ता कौन सा है। और वो देख लेता है और वो अंदर ही अंदर कहता है कि मुझे पता था मैं ही राइट हूं। परंतु क्या वो अकेला राइट था? नहीं। कौन राइट होगा? एनी गेस, कौन राइट होगा? पहला व्यक्ति राइट साइड, दूसरा व्यक्ति लेफ्ट साइड, तीसरा पीछे मुड़ जाता है, चौथा आगे बढ़ता चला जाता है और पांचवा झाड़ पर चढ़ जाता है। झाड़ पर चढ़ने वाले को लगता है कि मैं राइट हूं क्योंकि मुझे अब रास्ता पता चल गया है, और बाकी जो चार थे वो गलत थे। आपको क्या लगता है? They all were right, क्योंकि जो पहला था और जो राइट टर्न हुआ वो जंगल में खो जानवरों से हुई और वो उनके बीच में रहने लगा और धीरे धीरे वो सीख गया कि इन जानवरों के बीच में भी कैसे रहा जा सकता है, इस खतरे के बीच में भी कैसे रहा जा सकता है। और धीरे धीरे उसका साहस इतना बढ़ गया कि अब उसके मन में जो भय था वो नहीं रहा, वो दूसरों को अब सिखा सकता है कि जंगल के रास्ते से भी बिना भयभीत हुए कैसे जाया जाए। जो दूसरा व्यक्ति जो लेफ्ट टर्न हो गया था वो गया आगे और उसकी मुलाकात वहां पर चोर डाकुओं से हुई। उन चोर डाकुओं ने उसे लूट लिया, छीन लिया उसका सारा सामान, उसे बंदी बना लिया, उसको वहीं रखा। परंतु उस वाइस मैन के अंदर कुछ तो था, कोई चिंगारी थी, कोई ऐसी बात थी कि उसने उस डाकुओं को उसकी तरफ आकर्षित किया और वो सारे डाकू धीरे धीरे उसके संग में रहते रहते प्रभावित होने लगे। उसके अंदर जो दिव्यता थी, जो वर्च्यूज थे, वो जैसे बाहर निकलने लगे। वो कुछ नहीं कहता है, वहां बैठा रहता है चुपचाप। वो उसे मारने भी वाले थे परंतु मारा नहीं, परंतु उसके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल थे कि धीरे धीरे वो सारे डाकू परिवर्तित हो गए। तीसरा व्यक्ति जो ये कहता था कि मुझे पीछे जाना है और वो पीछे लौट कर चला जाता है, वो एक नया रास्ता निर्माण कर देता है। बाद में उसी रास्ते से लोग उस जंगल में प्रवेश करना चालू करते हैं, जिस जंगल में आज तक कोई गया नहीं था, सबको डर लगता था। उस व्यक्ति ने एक नया मार्ग जैसे खोल दिया कि एक पगडंडी तैयार कर दी और उसमें से फिर लोग उस जंगल में आने लगे। चौथा व्यक्ति जो आगे बढ़ गया उस जंगल में आज तक कोई घुसा नहीं था, किसी को पता नहीं था उस जंगल से परे भी कुछ है। वो एकमात्र वैसा व्यक्ति था जिसने ये साहस था, और वो उस साहस को लेकर आगे बढ़ा और उसे नई नई बातें पता चली उस जंगल की, कैसे उस जंगल से बाहर निकला जाए, कैसे कैसे पेड़ है, कैसे कैसी बातें हैं वहां पर, कैसे चट्टान है, किस तरह के पहाड़ है और सब कुछ। और जो पांचवा था वो भी अभी एक कंसल्टेंट बन गया है। अब वो लोगों को ये सिखाता है कि किसी भी समस्या से फास्टेस्ट निकलने की विधि मेथड क्या है। अगर हम ये कहे कि यू आर रॉन्ग आई एम राइट, ही इज रॉन्ग एंड अदर पर्सन इज राइट, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि दूसरा रॉन्ग है, परंतु हम दूसरों के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी तो नहीं। कुछ जानते हैं? हमें दिख रहा है दूसरा व्यक्ति, उसका चेहरा हमें पता है, उसके बाल कैसे, उसके कपड़े कैसे, उसके जूते कैसे, सब कुछ पता है। क्या वो अंदर से जो है और जैसा है हम उसे वैसा जानते हैं? नहीं। पति पत्नी एक साथ रहते हैं 40 साल, 50 साल, 60 साल, फिर भी ये नहीं कह सकते कि मैंने इनको जान लिया, कोई नहीं कह सकता। इसलिए सबसे पहली बात जो जीवन में सदा के लिए याद रखनी है वो ये है कि जब भी मैं ये कहता हूं कि आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग, ये अधूरा वाक्य है, ये इमैच्योर स्टेटमेंट है, हमें दूसरों के विषय में कुछ पता नहीं। इसलिए स्टॉप, वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, तुरंत कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचना है। और ये जो स्टेटमेंट है आई एम राइट, आई एम द ओनली पर्सन हु इज राइट, ये सारी झगड़ों का बीज है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, झगड़े, वाद विवाद, संघर्ष, ये सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है संसार में जहां ये सब ना हो, परंतु हम किस तरह से उसके साथ डील करते हैं, किस तरह से उसको फेस करते हैं। और जिस फील्ड में आप सब लोग हैं, नर्सिंग, मेडिकल फील्ड, इसमें तो फ्यूचर में बहुत सारी बातें आने वाली है। अभी जितनी बातों को आपने देखा है वो तो कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में हजारों बातें आएगी, एक एक दिन में 10-10 बातें आएगी, और यदि हम कमजोर रहे तो गिर पड़ेंगे। इसलिए ये यात्रा लंबी है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि कुछ भी हो जाए, नथिंग। एक अंग्रेजी में कविता है इनविक्टस, लेखक कभी लिखता है, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड, परिस्थितियां बहुत विकराल है, खतरनाक है, परंतु मैं झुकूंगा नहीं कभी भी, मेरा सिर पूरा खून से लथपथ है। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, मैं मास्टर हूं। किसी और लेखक ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी, अच्छी खबरें मुझे मत सुनाओ, बुरी खबरें सुनाओ, वो मुझे और पावरफुल बनाते और शक्तिशाली बनाते। तो जीवन में संघर्ष तो होगा, और बहुत बड़ा बड़े संघर्ष होंगे, और जितने बड़े संघर्ष होंगे उतने हम और ज्यादा पावरफुल बनेंगे, और ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे। जिसके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं और वो कहता है कि मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए, रियल ग्रोथ तो चालू ही तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। लीव डेंजरसली, स्लोगन है लीव डेंजरसली, जो आज तक कभी किया नहीं वो करके देखो। कांटे रौंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था पर मुझ में उनने भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, आटे रूंधूंगा अपनी राह बनाऊ। वो गोताखोर बनना है, वो सब चीजें करनी है जो आज तक की नहीं, वो सारे खतरे, क्योंकि एक परिस्थिति से गुजरने के बाद ही हम में वो पावर आती है जो पहले नहीं थी। वी ग्रो, माइंड जो है ना वो एक इलास्टिक की तरह है, वन स्ट्रेच्ड इट कैनॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये नहीं कहना कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है, सबके साथ क्यों नहीं होता है। अच्छा है तुम्हारे साथ हो रहा है, यू आर ग्रोइंग, ग्रोथ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो महान बना है और उसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो। अब्राहम लिंकन की जीवन कहानी पढ़ो, असफलता ही असफलता है, फॉट इलेक्शन फेल्ड, वाइफ डाइड, सन डाइड, लास्ट में कहीं है बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 17th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसके पहले लंबी कतार है असफलताओं की। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों सफर करूं, वाई मी। तो आज का हमारा विषय है प्रबंधन, किसका, कॉन्फ्लिक्ट्स का, क्या किया जाए। एक तो होता है जीवन का संघर्ष, एक होता है आपसी संघर्ष, दो व्यक्तियों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच। और संघर्ष होता क्यों है, कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों, अगर देखा जाए उसके कॉजेस तो बहुत सारे कॉज मिलेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे। एक मुख्य कारण है ईगो, हमारा अपना ईगो, जेलसी, कम्युनिकेशन बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से दो व्यक्ति आपस में रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। हर व्यक्ति एक ऊर्जा है, हर विचार एक ऊर्जा है, हर इमोशन एक ऊर्जा है। जैसे ही हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, हमारी ऊर्जा कम होने लगती है, हमारी पावर कम होने लगती है। किसी व्यक्ति के बारे में हम कंटिन्यूअस निगेटिव सोच रहे हैं कि ये ऐसा ही है, क्या हो रहा है, हम पावरफुल बन रहे हैं या वीक बन रहे हैं? वीक बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे संकल्पों की ऊर्जा वहां जा रही है। एक व्यक्ति साधु होता है, वो जा रहा है, सबने सुना होगा, सुबह सुबह मंत्र जाप करता है, ध्यान समाधि लगाता है और फिर समुद्र किनारे टहलने जाता है। देखता है एक व्यक्ति वहां एक स्त्री के गोद में है और वो सोचता है देखो कैसा कलयुग आ गया है, सुबह सुबह का समय, मेडिटेशन का समय है, भजन कीर्तन का समय है और ये व्यक्ति उस स्त्री के गोद में पड़ा हुआ है। नॉट ओनली दैट, वहां पर कुछ बोतल गिरी हुई है दारू की, वो भगवान से बातें करने लगता है कि ये क्या हो रहा है तेरे राज में, हे प्रभु व्हाट इज दिस। वो और नजदीक जाता है और जब उसे सत्य का पता चलता है तो उसे अपने ऊपर शर्म आती। वो जो युवक था वो एक मछुआरा था जो कि रात भर समुद्र में मछली पकड़ता रहा, कुछ उसे हाथ में नहीं आए, थक गया था, प्यासा था। सुबह सुबह उसकी मां आई थी और बहुत गरीब परिवार है, पिता कुछ नहीं करते, दारू पीते हैं, वो दारू की बोतलों में पानी भरकर लाई थी और वो बेटा इतना थक गया था कि उसकी मां की गोद में अपना सिर रख के सो रहा था वो युवक, वो जवान। दिस वॉज द ट्रूथ, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, जल्दी नहीं करनी है किसी के चरित्र पर दाग लगाने से पहले, किसी के जीवन पर कोई स्टैंप लगाने से पहले, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम अपने एक छोटे से दायरे में हैं, छोटी सी सोच है, उस हिसाब से हम देख रहे, सोच रहे, समझ रहे, बट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। थिंग्स वैसी है ही नहीं, बातें कुछ और है। तो संघर्ष तो सब जगह है, डिबेट सब जगह होगी, परंतु हमें अपने आप को स्टेबल रखना है जीवन, उसके लिए हम आज कुछ बातें देखेंगे कि क्या किया जाए कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो व्यक्तियों के बीच में, सीनियर के बीच में, जूनियर के बीच में, कॉलिग्स के बीच में, हमारे जूनियर के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, कहीं पर भी एनी कॉन्फ्लिक्ट, क्या किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट अर्थात झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात विवाद, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, बहुत सी बातें। ये टॉपिक बड़ा वास्ट टॉपिक है, जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, कंपनीज होती है, उसमें तो खास ये टॉपिक लिया जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और केवल किसी कंपनी की बात नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा। जहां पर भी दो लोग साथ में आएंगे कुछ ना कुछ होगा, दो एक छोटा सा परिवार, उसमें भी कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ऐसा कभी कोई दिन नहीं है कि जिस दिन वहां कुछ हुआ नहीं है। हम उसको किस तरह से लेते हैं, छोटी बात को बड़ा कर सकते हैं, बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं। एक बहू अपने सास से कहती है कि मेरा कल रात को पति के साथ बहुत झगड़ा हो गया। वो सास कहती है कोई बात नहीं, घर परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। पर बहू कहती है वो सब तो ठीक है, पर लाश को ठिकाने कहां लगाना है वो बताओ। छोटे से छोटी जगह, बड़ी सी बड़ी जगह, छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा से बड़ा हो गए, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, और कारण बहुत सारे हमने देखे। जेलसी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, कास्ट, क्रीड डिफरेंस, या फिर दो संस्कृतियां, दो कल्चर, दो विचार, दो शब्द जब टकराते चिंगारी होती है, अपोजिंग थॉट्स, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, हमको लगता है ये ऐसा होना चाहिए, उसको लगता है वैसा होना चाहिए, हम सोचते हैं ये ऐसा है, वो सोचता है वैसे है, हम सोचते मैं ही राइट हूं, पहले मानो कि तुम गलत हो उसके बाद ही डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट के ढेर सारे कारण है। अब हम क्या करें, कैसे ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको बहुत आसानी से कैसे पार करें, इस टॉपिक के विषय में हम ऐसी कुछ बातें देखेंगे। अबाउट 16 पॉइंट्स ए बी सी डी जो आपको याद रहे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ए फॉर अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कैसे करें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण हमारा ईगो होता है। थोड़ा सा उसको नीचे कर दो, ऐसा कहा जाता है इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार की लड़ाई में जीतता कौन है, जो हारता है, इसलिए हार जाओ। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट जितना हो सके। अगर हमारा आज कॉलेज में, स्कूल में किसी से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, शाम को हम पढ़ पाते हैं क्या, मेडिटेशन कर सकते हैं, डिस्टर्ब रहता है माइंड, इसलिए जितना हो सके चुप रह जाओ, अवॉइड करो कॉन्फ्लिक्ट। एक स्टोरी हम हमेशा सुनाते हैं, एक व्यक्ति ने अपने जीवन कहानी 5 चैप्टर्स में लिखी है। चैप्टर नंबर 1, मैं जा रहा था, अंधेरी रात थी, एक गड्ढा आया, मैं गड्ढे में गिर गया और मैंने जोर से चिल्लाया कि दोष मेरा नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, मैं कभी भी नहीं निकल पाया गड्ढे से बाहर। चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 2, अंधेरी रात थी, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है, फिर भी मैं गिर गया, मैंने चिल्लाया मेरा दोष नहीं है, मुझे टाइम लगा, मैं निकला तो, परंतु टाइम लगा निकलने के लिए। चैप्टर नंबर 3, अंधेरी रात थी, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता है वहां गड्ढा है, पर मैंने अपने आप को प्रिटेंड किया कि मुझे पता नहीं वहां है और मैं गिर गया। और फिर मैंने कहा दोष मेरा, और जैसे मैंने कहा दोष मेरा है तुरंत आई वॉज आउट। चैप्टर नंबर 4, अंधेरी रात थी, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। ये है जीवन की कहानी। हमको पता है इस व्यक्ति के साथ हमारी नहीं बनती है। चुप रहो, डोंट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, चुप रह जाए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना पढ़ाई होती है, ना सो पाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट इज ए फॉर अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बी बी काम, शांत रहो। कामनेस जो है ना बहुत बड़ा वर्च्यू है। एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, उसका पूरी की पूरी जमीन जिसमें इतना बड़ा साइंटिफिक वो प्लांट था, जिसमें सारा रिसर्च था, 1910 शाम को 5:10 पूरा जल गया, आग लग गई न्यूयॉर्क। इतना बड़ा रिसर्च, इतने सालों का सारा रिसर्च उसके अंदर है, सारी कितनी किताबें है, डायरिया है, सब कुछ है, वो सब जल रहा है। एडिसन ऐसा खड़ा है, बूढ़ा आदमी है। उसका बेटा भाग के आता है, कहता है पिताजी ये क्या हो रहा है। वो अपने बेटे से कहता है बेटा जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ। ऐसा दृश्य, ऐसा सीन बाद में देखने को मिलेगा नहीं, जस्ट कॉल योर मदर। उसके बेटे ने अपनी पिता के साथ का ये अनुभव रीडर डाइजेस्ट में लिखा था, 1953 के रीडर डाइजेस्ट में। आई सॉ माई फादर वॉज सो काम एंड क्वाइट एज इफ अनटच्ड by what is happening there. The entire plant is burning and he is absolutely calm and tranquil. Par shant hai matlab ye nahi ki bas nishkriya ho gaya, inertia mein chala gaya. 6 mahine ke andar phir se sab kuch khada kar diya. Agar koi dusra hota to dukhi hota, udas ho gaya hota, devala nikal gaya, are are kya ho gaya ye, jeevan bhar ki sari kamai chali gayi. 6 mahine ke andar phir se khada kar diya sab kuch. Stay calm. जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुई, सब भी झगड़ा हुआ, कुछ भी हो जाए, झगड़े में आवाज कैसी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? दो व्यक्ति है, जोर जोर से क्यों बोलते हैं? एनी आंसर? हाँ, एंग्जाइटी। और अभी आप दोनों बैठे हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, थोड़ा सा आवाज यहां पर तक भी सुनाई नहीं आएगी, पर अगर झगड़ा हो जाए तो जोर जोर से क्यों बोलते हैं? हाँ, दूसरा सुने इसलिए। और झगड़े में आवाज बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि झगड़े में दिल बंद हो जाते हैं, इसके लिए आवाज सुनाई नहीं देती है, हम सुनना ही नहीं चाहते दूसरी बात, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन। इसलिए सेकेंड प्रिंसिपल है बी फॉर बी काम, शांत रहो। जो जितना शांत है उतना पावरफुल है, जो जितना बोल रहा है ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इससे बात करूं उससे बात करूं, इससे काउंसलिंग करूं उससे काउंसलिंग करूं, शांत, स्टे काम। थ्री, सी फॉर कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज अर्थात समझौता। कई बार हमको समझौता करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है, हमारा दिल नहीं कहता है मानना है, पर मान लेना कहता है, मान लो। ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है। हमारी इच्छा नहीं है कि हम ये सेवा करें या ये जॉब करें, ये ड्यूटी करें, पर हमें कहा गया कि तुम ये करो, और कहने वाले हमारे सीनियर है, हमारा मन तो विद्रोह कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, बट जस्ट फॉलो एंड देन सी व्हाट हैपेंस। Not just with senior, but with your colleagues, with your juniors. और ऐसा बहुत सा जीवन में होगा। हमको याद है हमारे ही जीवन में, जब हम पहले ग्लोबल हॉस्पिटल में थे 2003, 2004, 2005, फिर यहां से गए एक जगह, फिर वहां से, फिर मुंबई, और मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, तो वहां गए तो हमने कहा हमको यहाँ ज्वाइन करना है, ज्वाइन भी कर लिया, पर एकोमोडेशन का इश्यू था। तो एकोमोडेशन वहां पर जो दिया गया, और जो पहला दिन हम गए और वो एकोमोडेशन कमरा देखा, वो फ्लैट सिस्टम थी, लंबा 14 मंजिल, 14 या 20 मंजिल, हमारा 14th फ्लोर पे था। तो हमको दिखाने लेके गए और जैसे उसको खोला हमने देखा, अरे बाप रे, इतना खतरनाक कमरा, यहाँ हम नहीं रह सकते। वहां दारू की बोतलें पड़ी हुई थी और कचरा इतना था, 3 दिन लगे साफ करने, पर उसी दिन हमने सोचा हमको यहाँ रहना ही नहीं, हम जा रहे वापस। और फिर सोचा कि हम आए किस लिए, यहाँ पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए। हमने सोचा हम तुरंत रेजिग्नेशन दे देंगे, पर हम डटे रहे उस परिस्थिति में भी। ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में होती रही और हमने देखा है कि जब हम करते हैं तो अपने आप मदद आने लगती है फिर सब तरफ। पर हम पहली हार मान देते हैं कि हमें तो नहीं करना है, ये मेरे से नहीं होगा। फर्स्ट ना कह देना, कोई काम दिया गया हम ना क्यों कहते, ये मुझे नहीं आता, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस। मुझे याद है व्हेन आई वाज इंटर्न, इंटर्न मतलब एमबीबीएस पूरा हुआ और फर्स्ट पोस्टिंग ऑर्थो पोस्टिंग थी, 15 डेज की फर्स्ट पोस्टिंग की फर्स्ट नाइट। आज तक हमने कभी कोई इंजेक्शन को हाथ नहीं लगाया, कभी कोई पेशेंट खाली एग्जाम में एमबीबीएस में खाली दूर से देखना है और वाइवा देना है और पास करना, ये लक्ष्य। डायरेक्ट पेशेंट का मैनेजमेंट और पेशेंट को टच करना ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसी नाइट एक वीआईपी पेशेंट आया, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे और वो जो वीआईपी पेशेंट था उसको हेड इंजुरी थी, और जहां हम थे जिस मेडिकल कॉलेज में वहां पर सीटी स्कैन था नहीं, तो उसको डॉक्टर आया, उसको इंटुबेट कर दिया और फिर कहा कि इसको नागपुर शिफ्ट करना है, कौन जाएगा साथ में? तो कोई था नहीं जाने के लिए, हमने कहा हम जाएंगे। ना तो कभी पेशेंट इस तरह से देखा है और इतना सीरियस पेशेंट। तो वो सिस्टर, एक स्टाफ और वो एक, वो सब लोगों ने हमको समझाया ये इंजेक्शन से ये ऐसे ऐसे देना, हमने फटाफट नोट करके रखा और निकल पड़े पेशेंट के साथ। वो पूरी 5-6-7 घंटे की जर्नी थी। पेशेंट इतना सीरियस था कि पूरा हमारा जो टी शर्ट और जीन्स पूरा उसमें खून ही खून, उसका एटीट्यूड से कंटिन्यूस खून आ रहा था। पर हमको था कि हमको इस पेशेंट को पहुंचाना है और जिंदा पहुंचाना है। और हमको ये भी बताया गया पेशेंट कभी भी जा सकता है, इतना क्रिटिकल पेशेंट है। उस समय तो हमने सीटी स्कैन मशीन ही नहीं देखी थी कैसी होती है, फर्स्ट टाइम सीटी स्कैन मशीन। जब नागपुर पहुंचे, बीच में वो पेशेंट जा रहा है, हम अपने नोट कर रहे हैं, उसके पल्स नोट कर रहे हैं, उसका बीपी नोट कर रहे हैं, कभी मिल रहा है कभी कुछ नहीं मिल रहा है। बीच में वर्धा के पास पहुंचे, ऑक्सीजन सिलेंडर फिनिश हो गया, फिर सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल था वहां गए, उन्होंने कहा यहाँ नहीं है, वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए पूरा खून ही खून, वहां से ऑक्सीजन चेंज किया, फिर देखा लाइन आउट हो गई, लाइन अंधेरा पूरा। एक स्टाफ नर्स थी उसको लिया और उसको पकड़ के उसको बोला कि आप लगाओ लाइन, उसने पहली लाइन लगाई, फिर पेशेंट को स्टेबिलाईज किया, फिर लेके गए। सुबह हो रही थी और पेशेंट तो बहुत क्रिटिकल था, बहुत बैड था, और जैसे ही सिटी स्कैन सेंटर जो था वहां पहुंचे और पेशेंट को टेबल पर लिया, फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इसको सिटी स्कैन कहते हैं, वहीं पे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ। फिर वो लोगों ने सीपीआर ये सब किया, उस समय इंट्रा कार्डियक देते थे हार्ट में, अभी तो वो बंद हो गया है, वो भी हमने पहली बार देखा। पेशेंट की डेथ हो गई, बट हमारा लक्ष्य था उसको वहां तक तो पहुंचाना है। वो पहुंच गया वहां तक, और फिर उसके रिश्तेदार, फिर ये बताया गया कि अभी इसी पेशेंट को डेड बॉडी को तुमको वापस लेके जाना, उसी एम्बुलेंस से। इस बार हम फिर आगे बैठे थे, बॉडी पीछे, तो हम सोच रहे थे कैसा खेल है ये, बट वो एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस था। हम ना भी कह सकते थे कि आई एम अ न्यू, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे जाऊं, पर हमने ना नहीं कहा जाऊंगा, जो भी कहा यस आई विल डू इट। और वो जो एक्सपीरियंस था आज तक याद है। हमने देखा वो जो ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, उसके लिए इतना रिस्पेक्ट हमारा बढ़ गया कि उसको सारे रास्ते पता था। हम सोच रहे थे एक तरफ हम है जिसको कोई रास्ते पता नहीं, और ये देखो। इसलिए कहते हैं ना, 3 प्रोफेशन ऐसे है, एक डॉक्टर, एक टीचर और एक ड्राइवर। दे आर वेरी ग्रेट प्रोफेशन। छोटी छोटी चीजें जो हमने ऑब्जर्व की वहां पर, कैसे स्टेबल रहना है, वो तो बात छोड़ो, अभी इस संडे, लास्ट संडे, अभी ग्लोबल हॉस्पिटल ऊपर बहुत रिलेटिव्स ने इतना भयंकर हंगामा किया, पर वो सब शांति से सेटल किया, हुआ हो गया अपने आप। और 6 बजे से आईसीयू में थे, 9:30 बजे शांतिवन में क्लास थी हमारी, और क्लास का टॉपिक था स्वीटनेस इन एडवर्सिटी। स्वीटनेस इन एडवर्सिटी, और वो इतना हंगामा कर रहे हैं रिश्तेदार, गांव के थे, उनको इतनी समझ नहीं, पेशेंट है जिंदा, वो कहते पेशेंट मर गया है, आप हमको बता दो मर गया है, उधर हार्ट रेट दिख रहा है, प्रताप सर ने कम से कम आधा घंटा उनको समझाया, फिर भी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे मर ही गया, आप लोग झूठ बोल रहे हो, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सी चीजें चालू थी, रात से ही चालू थी। तो उनको सबको सेटल करना, और फिर 9:45 बजे निकले वहां से, और तुरंत यहाँ पे स्वीटनेस इन एडवर्सिटी। तो परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, संघर्ष होंगे, वी हैव टू स्टे काम, एक्सेप्ट, समझौता करना पड़ेगा। एवरी टाइम सारी हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही रियल ग्रोथ चालू होती है। कमरा ठीक नहीं है, रूम पार्टनर ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, ऐसा लगता भाग के चले जाऊं यहाँ से। हर व्यक्ति को एक बार भाग कर जाने की तो इच्छा होती है, कभी ना कभी तो लगता ही है यहाँ से भाग जाओ, कुछ दूसरा कर लो। हमारा एक दोस्त था, बैचमेट, MBBS हुआ, उसका भी हुआ, हमारा हुआ, उसको MD मिला मेडिसिन, पर इतना काम, उसने कहा मेरे से ये काम नहीं होगा, इतने पेशेंट, 400 पेशेंट मुंबई KEM, वो छोड़ दिया, फिर एग्जाम दिया, फिर उसने कहा थोड़ा लाइट वाला लेता हूँ, स्किन में कैसा बैठो, प्रिस्क्रिप्शन लिखो, पेशेंट जाए, कोई इमरजेंसी नहीं है, स्किन मिला, फिर स्किन लिया, स्किन में बोर हो गया, उसने कहा इसमें थ्रिल नहीं है कुछ, फिर डी ऑर्थो लिया, फिर ऑर्थो किया, ऑर्थो में भी उसको पूरा हाथ दुख गए उसके, सारे इंस्ट्रूमेंट उठा के पकड़ के वो बीच में छोड़ दिया 6 महीने में। अभी अपने गांव में लीडिंग प्रैक्टिशनर MBBS, पर अंदर से दुखी है, कहीं पर भी नहीं टिक नहीं पाया, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, जो ले लिया अब इसमें आगे बढ़ो, अब पीछे नहीं हटना है, अब ये नहीं सोचो कौन सा ऑप्शन दूसरा बी था, यही सब कुछ है, इसी में कितना भी इतना आगे बढ़ जाओ। डोंट, ये जैसे एक एम्प्लॉय आता है इंटरव्यू के लिए, उसका बॉस पूछता है तुम्हारा गोल क्या है, वो कहता है तब तक नहीं रुकूंगा जब मैं अपने आप को तुम्हारी सीट पर नहीं देख लेता। दिस इज द गोल। मुझे ये भी याद है जब हम MBBS में थे और मेरा फर्स्ट डे था MBBS का, तो वहां पर जो डीन थे कॉलेज के, उनका लास्ट डे था और उनका फेयरवेल पार्टी थी, और वो फेयरवेल पार्टी में उनका लास्ट कंक्लूडिंग स्पीच में डॉक्टर आईचीत ने कहा, जब मैं पहली बार इस मेडिकल कॉलेज में आया 1960s में, तो मैंने संकल्प किया था कि जिस कॉलेज में मैं एंट्री कर रहा हूं एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा, फर्स्ट थॉट। फिर रैगिंग और ये सब चीज बहुत सारा सब होता था, पर वो जो पहला थॉट था, वो थॉट उन्होंने रखा अपने पास, उसको कैरी किया, उसको विजुलाइज किया, उसके ऊपर काम किया, एंड वन डे ही बिकेम द डीन ऑफ दैट कॉलेज। वो एक ड्रीम था, एक विजन था। तो अपना गोल कितना बहुत ऊंचा रखना है, बहुत ऊंचा गोल रहेगा ना, तो ये जो छोटी मोटी झगड़े वगैरह हो रहे हैं ना, ये कुछ नहीं लगेंगे, हमें तो रहना वहां है, वहां पहुंचना है। तो सी फॉर कॉम्प्रोमाइज, डी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे, दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते, हमको लगता है इसको इतना भी नहीं आता है, इतना मूर्ख, इतना बुद्धू है ये चीज हमने 2 दिन में सीख ली, इसको 10 दिन हो गया अभी तक नहीं सीख पा रहा है। अरे उसने सीखने को टाइम ले रहा है, पर उसको कोई दूसरी ऐसी बात होगी जो तुमसे ज्यादा आती है, जो तुमको कभी नहीं आएगी, वो उसको आती है। ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल में एक भाई है जिसका काम है फाइल यहां से वहां पहुंचाना, जानते होंगे सब, चेतुराम भाई है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको लिखना आता है ना पढ़ना आता है। हमको याद है एक बार हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, कुछ ज्ञान की बातें की डिस्कशन चालू थी, तो वो बैठा था, तो कोई पॉइंट डिस्कस हो रहा था, सबसे पूछा गया तुम बताओ। उन्होंने जो पॉइंट बताई वो इतनी नई थी कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। जीरो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, फाइल पहुंचाते हैं ओपीडी से वार्ड, वार्ड से ओपीडी, बस ये काम है। बट लुक एट द यूनिकनेस, इसके लिए एवरी सोल इज नॉट जस्ट यूनिक बट मास्टरपीस है। इसके लर्न टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन ओपिनियन, तो रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, डी फॉर डिफरेंसेस, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति के डिफरेंसेस होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम होशियार है और हम ज्यादा होशियार है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कम होशियार है और वो ज्यादा होशियार है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं। हमने देखा है कॉलेजेस में ये होता है, जैसे ही लिटिल रिजल्ट लगता है कोई ना कोई फर्स्ट तो आता ही है, कोई ना कोई फेल होता है, कोई सेकेंड थर्ड, दुख होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, उसी यूनिकनेस पे आधार पर उसको वो मिला है ई। उसके बाद में ई इज इमोशनल क्वेश्चेंट। इमोशनल क्वेश्चेंट मीन्स दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करना, दूसरों के क्या इमोशंस है। हमारा कोई जूनियर है, हम उससे कहें तुम ये करो ये करो वो करो वो करो, वो बेचारा करता भी है पर अंदर से स्ट्रेस में है बेचारा, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। या फिर दो फ्रेंड्स है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाते या हर्ट करते, डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। टेक केयर ऑफ ईच अदर्स इमोशंस, जैसे कोई मुझ पर कमेंट करता है और मेरे खिलाफ बोलता है तो मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है भीतर, वैसे उसको भी तकलीफ होती है, उसको भी निंदा करने के बाद तकलीफ होती है। इफ यू बैकबाइट इन हिज एब्सेंस, उसको भी दर्द होता है। फील दैट पेन, इमोशनल क्वेश्चन, ये फील करना चालू करेंगे तो वो कम हो जाएगा झगड़ा। तो उसके बाद है एफ। एफ मीन्स फॉरगिव एंड एपोलोजाइज, जहां हो सके माफी मांग लो या माफी मांग लो, माफ कर दो और माफी मांग लो, ये सबसे सिंपल चीज, माफी मांग लेना, ये कह लेना कि मेरी गलती हो गई है। एक होता है एक्सप्लेनेशन देते रहना, कोई लोग ऐसे होते हैं मानते ही नहीं कि हम गलत है, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, जस्ट स्टॉप, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट योर एक्सप्लेनेशंस यू आर गिविंग, जस्ट बोल दो आई एम सॉरी, फिनिश। हो सकता है कई बार कि हमारी गलती ना भी हो, फिर भी हम देखते हैं कई बार ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं ऊपर हॉस्पिटल में, और गलती किसी एक ने की है जिसकी ड्यूटी आफ्टरनून थी, अभी नाइट वाला आया, हम नाइट वाले से पूछते हैं कि ये क्यों नहीं किया, उसने कुछ नहीं, उसकी गलती है ही नहीं एक्चुअली, फिर भी कई बार ऐसा होता है वो कहते हैं आई एम सॉरी सर, फिर भी। कई बार हम कॉल करते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि वो एक पेशेंट आने वाला है, वो ये लोग ये नहीं कहते सर मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी तो 2 बजे तक है, खत्म हो गई है, वो दूसरा आएगा, वो नहीं, वो कहते हाँ ठीक। या फिर कई बार ये हमारा एक्सपीरियंस है कई सालों का ऊपर, कि जब भी हम कोई भी जूनियर डॉक्टर को कॉल करते हो कहते ये पेशेंट को जाके तुम देख लो, वो ये नहीं कहते सर मेरी ड्यूटी तो हो गई है, वो जाके देख लेते हैं। दिस अ वेरी ग्रेट वर्च्यू। हाँ कोई कोई होते हैं ऐसे एक दो जो थोड़े लड़ाकू होते हैं, वो कहते नहीं नहीं मैंने देखूंगा, मुझे पता नहीं कुछ, मेरी तो गलती है ही नहीं, मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई। ये नर्सिंग में भी बहुत होता है, मेरी ड्यूटी में नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता, वो जो सीनियर पूछ रहा है ना उसको भी पता है तुम्हारी ड्यूटी में नहीं हो रहा है फिर भी पूछ रहा है, यही तो देखने के लिए पूछ रहा है। और अगर हम ये कह दे कि आई एम सॉरी तो कोई फांसी पे तो नहीं लटका रहा है ना। एक्सेप्ट। उसके बाद में जी, जी फॉर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद का भाव। एवरी डे एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करना है। जो हमारे टीचर्स है उनको इमर्ज करो, उनको देखो थैंक्स, अपने पेरेंट्स को थैंक्स। ये कॉलेज में जितने लोग हैं वर्किंग कम्युनिटी, नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, सबको थैंक यू। जूनियर है उसको भी थैंक यू, क्योंकि इन्होंने हमको कितना कुछ सिखाया है। हमको याद है 15 डेज की हम लोगों की पोस्टिंग होती है, हम लोगों को मेडिसिन सिखाने वाले कौन थे? डॉक्टर्स नहीं थे, नर्सेस ने सिखाया, पेशेंट्स ने सिखाया, मुंबई में उसको मामा मौसी ऐसा कहते हैं, नर्सिंग स्टाफ को जो हाउसकीपिंग होते हैं ना उनको, वो लोगों ने सिखाया। डॉक्टर्स के पास टाइम ही नहीं होता है सिखाने के लिए। ये जो जूनियर लोग होते हैं ना वहां पे, जो 20 साल से काम कर रहे हैं, जो प्लास्टर लगाने वाला है वो भाई, वो उसने सिखाया कैसे प्लास्टर लगाना है। इतनी सारी बातें हमने उनसे सीखी है। नर्सेस जो 20 साल 30 साल से वहां काम कर रही है, उन्होंने सिखाया कैसे करना है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। ये जो ग्रेटफुलनेस है ना, इसमें पॉजिटिव एनर्जी है और कंप्लेन में निगेटिव एनर्जी है। सो दिल से निकलना चाहिए थैंक टू गॉड, थैंक टू टीचर, थैंक टू एवरीवन जो यहां है, सबको थैंक यू। पावर आएगी अंदर। उसके बाद में एच, एच इज एच एस पी। एच एस पी अर्थात हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। छुई मुई, थोड़ा कुछ बोल दो, उदास नाराज रूठना, आंखों में आंसू। उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, उसको बोल दो कि तुमने गलती की, बस 3 दिन के लिए नाराज। हम इधर से वो उधर से, हम उसके तरफ इधर देखेंगे वो उधर देखेगी। दिस इज अ डेंजरस पर्सनैलिटी। अपने आप को एचएसपी नहीं बनाना है, पावर पर भरनी है अपने अंदर। छोटी छोटी चीजें होती रहेगी, हम आगे से नाराज होते रहेंगे, रूठते रहेंगे, रूठना नाराज होना, रूठना नाराज होना, पूरा जीवन इसमें चला जाएगा। द मैन नेवर क्राइज, इंग्लिश में कहते हैं द मैन नेवर क्राइज। द मैन मीन्स स्त्री पुरुष नहीं, मेल फीमेल नहीं, द मैन नेवर क्राइज, बी वेरी स्ट्रांग। हम हमेशा वो एक चित्र बताते हैं सबको, किसी ने भेजा था, दो हिरन, एक छोटा हिरन, एक वही हिरन बड़ा हो गया। जब यंग है वो हिरन, तीर चुभा हुआ है, गिर गया नीचे, एक ही तीर से गिर गया। वही हिरन अब बड़ा हो गया, पूरा शरीर में तीर ही तीर है और खड़ा है स्ट्रांग। किसी ने कुछ बोल दिया, नाराज हो गए, पढ़ाई छोड़ दी। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो गए, स्ट्रांग। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई हमें कुछ भी नहीं कहे? हो सकता है ऐसा? अगर चाहते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट, आप एप्लीकेशन दे दो कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको दे देंगे, पर देन आप कभी भी इंप्रूव नहीं होगे। जहां हो वहीं रहोगे 10 साल के बाद। लोग डरेंगे, इसको कुछ कहना नहीं है नहीं तो ये नाराज होता है, बट देन यू नेवर इंप्रूव। इंप्रूवमेंट तो तब आती है जब हर्ट, शॉक, ट्रॉमा, दिल आहत होना चाहिए, आघात लगने चाहिए, उसको जख्मी होना चाहिए, तब वो उठता है और पावरफुल बनता है। तो एचएसपी नहीं बनना। गर्ल्स रोते तो नहीं है ना? नहीं ना, दूसरों को रुलाते हैं। एक पत्नी अपने पति से कहती है, दोनों का झगड़ा हो जाता है, वो कहता है लेट अस कॉम्प्रोमाइज। वो कहता है क्या कॉम्प्रोमाइज है? बोलता जस्ट कॉम्प्रोमाइज कर ले, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुमको माफ कर दूंगी, ये है कॉम्प्रोमाइज। आई, आई फॉर इंट्रोवर्शन। अगर झगड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हो ही गया झगड़ा, हम चाहते नहीं हो पर हो गया, क्या करें अब? झगड़े के समय थोड़ी ना सोचते हैं हम झगड़ा नहीं करना है, अपने आप हो जाता है। अब हो गया, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अपने आप से बात करो। इंट्रोवर्श, डेल कार्निग नाम सुना होगा, बहुत बड़ा लेखक है अमेरिका का, पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत सारी किताबें हैं डेल कार्निगे की। डेल कार्निग ने एक बार भाषण दिया अब्राहम लिंकन पर और वो भाषण बहुत प्रसिद्ध हुआ, पर उसको एक लेटर आया एक बहन का, उसने लिखा कि तुमने जो भाषण किया उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि आई हैव डन रिसर्च ऑन अब्राहम लिंकन एंड वॉट एवर यू हैव स्पोकन देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट स्पीच, यू डोंट नो हु इज लिंकन। अब डेल कार्निगी ने खुद अब्राहम लिंकन पर एक किताब लिखी हुई है, द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन बाय डेल कार्निगी। वो कहता है ये कौन बहन है जो मुझे सिखाती है कि मैंने गलतियां की है? वो कहता है इसका जवाब मैं दूंगा, और घर पे जाता है और एक खतरनाक डेरीला लेटर लिखता है इसको सबक सिखाने के लिए, मुझे सिखाती है, अरे मैं इसमें मास्टर हूं, पर सोचते अभी लेट हो गया, कल पोस्ट करता हूं, अभी लेट हो गया ना, कल करूंगा। वो तकिया के नीचे रख देता है, दूसरे दिन पोस्ट करने जाता है, देखता है एक बार पढ़ तो लू। वो कहता है बाप रे थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने, इतना नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा कम करता हूं। रिपीट लेटर ही राइट्स, एक दूसरा लिखता है और सोचता है एक रात में इतना परिवर्तन आ गया तो वाई नॉट टू वेट फॉर वन मोर नाइट, और रुक जाता है थोड़ा एक रात के लिए। दूसरे दिन पढ़ता है, बोलता है ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन लेटर लिखा पढ़ता है, बोलता है ये सब हटाओ, एक नया लेटर लिखता है उस बहन को, डियर सिस्टर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे जो गलतियां बताई, एक्चुअली रियली में मेरे से गलती हुई थी। और फिर अगले दिन वो बहन उनसे मिलने आती है एंड दे बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। अगर पहला लेटर भेज दिया होता तो लाइफ लॉन्ग एनिमीज। इसलिए एसएमएस करने से पहले थोड़ा सोचना, ठीक है जल्दी नहीं करना एसएमएस, बाय अलविदा, अनब्लॉक, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, डिलीट, स्पैम, जल्दी नहीं करना थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा धीरज। जे जे अर्थात जोक्स, ह्यूमर को लाना है। इसलिए ना बीच बीच में थोड़ा पिकनिक जाना चाहिए, अगर झगड़े विगड़े ज्यादा हो जाएंगे ना पिकनिक विकनिक जाए ना तो उसमें खेल कूद में झगड़े तो भूल जाता है व्यक्ति। और थोड़ा ह्यूमर, ब्रिंग ह्यूमर, ह्यूमर जब तक नहीं आएगा तब वो जो टेंशन रहता है ना कि मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको ऐसा कह दिया। मुझे याद है 2003 में ऊपर से एक गाड़ी रोज नीचे, हम लोग, मैं ज्वाइन किया तो मुझे उसमें डाल दिया, तो घूमता फिरता दवाखाना, ठीक है ना, वो घूमता फिरता, वो गाड़ी थी एम्बुलेंस, कम्युनिटी सर्विस, सीएसपी, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, मेरे से शुरुआत हुई थी उससे। तो आई यूज टू कम इन दैट व्हीकल डेली। तो उस व्हीकल में प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग जाते थे ये रोड से सीधा इधर गांव में, केयर, इसरा, काछोली, फुलाबाई का खेड़ा एंड ऑल दोस, स्वरूपगंज के इधर। तो वो गाड़ी में पहले से ही कुछ लोग हॉस्पिटल के अपना सामान डाल देते थे, तो हम आके देखते थे ये क्या है, वो कहते नहीं हमको शांतिवन छोड़ देना अरे आई एम नॉट गोइंग टू शांतिवन। पहले दिन ठीक है, दूसरे दिन ठीक है, कई दिन तक चला। फिर एक बार हमको गुस्सा आ गया, तो एक टीवी रखा था, वो टीवी को शांतिवन पहुंचाना था इनको। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, टीवी को बाहर निकालो ये गाड़ी टीवी पहुंचाने के लिए नहीं है, दिस इज कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, सीएसपी। वो बेचारा चुपचाप वो भाई ने निकाल दिया, पर बाद में फिर हमको ना दिल खाते रहा, गलती हो गई यार, क्या लेके जाते तो क्या हो जाता, दे दिया होता उधर बाजू में तो है शांतिवन, आईटी वाले लोग उनका था कुछ। तो फिर हमने, पर सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर उससे रोज पूछते थे कुछ है तो डालो कुछ है क्या, मतलब ऐसे थोड़ा ऐसे दिखाने का कि आई एम नॉट बैड फीलिंग अपोलॉजिस्टिक, बट ऐसे पूछते थे कुछ है क्या, वो कहते चलो हम वहीं से जा रहे हैं। सॉरी बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, वो नहीं हो पाई हमसे तब जोक्स। उसके बाद में एल, एल फॉर लेट गो। छोटी छोटी बातें होती है, भूल जाना है उसको, मन पे नहीं पकड़ के रखना है। उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा कहा था, बहने भूलती नहीं है, उसके साथी ने उसको एक बार कहा था गेट आउट, अभी तक याद दिलाती रहती है गेट आउट, तुमने बोला था तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं भूलने वाली नहीं हूं, तुमने मुझे बोला ही कैसे, अरे 100 बार माफी मांग चुका है। पर बहनों को तलाश होती है इवेंट की, वो बात आ गई तो उसको रिमाइंड करने का कि तुमने मुझे गेट आउट कहा था, मैं भूलूंगी नहीं, फिर से सॉरी बोलता है। टाइम हो गया क्या? एल, लेट गो। एक पति पत्नी होते हैं, पति कभी शराब नहीं पीता है, पर एक पार्टी में जाते हैं, पहली बार शराब पीता है और हंगामा करता है, और जब घर आते हैं होश में आता है, अपनी पत्नी से माफी मांगता है। आज तक कई बार माफी मांग चुका है उस बात के लिए, और एक ही बार हुई उससे, आज तक उसकी बात कभी रिपीट नहीं हुई। फिर भी पत्नी जब भी कोई बात होती है जीवन में, एक बात उसको जरूर कहती है, ये भूलना मत कि मैंने तुमको माफ किया था। She keeps on reminding him that I had forgiven you. Don't forget this ever. कि मैंने तुमको माफ किया था, उसको भी याद रखा है उसने। अगर कोई रस्सी है उसको जोर से खींचो तो क्या होता है, यहां पर लाल लाल हो जाता है ना, छोड़ दो, हो गई बात, गई रात गई, कल हुआ ना वो, उसको भूलो। ऐसी कितनी बातें होती रहती है। ये पेशेंट आते हैं ग्रासिया, गांव के लोग, यहाँ चोट वहां चोट, आते हैं दूसरी बात के लिए, डायबिटीज के लिए या कोई और बात के लिए। हम कहते हैं ये क्या लगा, इसके लिए कुछ दे क्या? कहते डॉक्टर साहब छोड़ो ना, ऐसा तो कितना लगते रहता है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है, ऐसा तो कितना लगते रहता है। हर जख्म को पकड़ के नहीं बैठना है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। चीजें आती है जाती है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, प्रवाह है उसमें, अनित्य है वो, जाने दो उनको, पकड़ के नहीं रखना है, नहीं तो दुखी होते रहेंगे हम। उसके बाद में एम, एम फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपना स्ट्रेस मुझे पता है और किसी को नहीं पता, वो कैसे मैनेज करना वो भी मुझे पता है। इसके लिए आप जहां हो, यहां पे आपके पास मेडिटेटर्स है, लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। और वो खाली मेडिटेशन ही नहीं, बहुत सारी चीजें है, आउटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, क्रिएटिविटी, समथिंग वो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करेगा। बुक्स रीडिंग, न्यू बुक्स पढ़ो, क्रिएटिविटी लाओ अपने जीवन में, नया चीज। ये चीज सब लोग ऐसा करते हैं, इसको और किस तरीके से की जा सकती है। मेमोरी ट्रेनिंग, बिकम मास्टर मेमोरी ट्रेनर। एक बार पढ़ लो तो कैसे याद रखे। निमोनिक्स बनाओ, टेक मेथड, चेन मेथड, न्यू थिंग्स। वो स्ट्रेस जो है ना, नहीं तो माइंड जो है ना पागल हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कोई भी सेटअप में, किधर का भी हो, कैसा भी हो। एट इंडिविजुअल लेवल यू हैव टू फाइंड आउट सर्टेन मेथड्स टू रिड्यूस योर, डिफ्यूज योर स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, कहां थे हम? मैनेजमेंट, एम एन, एन मीन्स न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग मतलब हर परिस्थिति जो जीवन में आ रही है कुछ ना कुछ सिखाकर जा रही है। झगड़ा हो गया, सब हो गया, अभी बैठो और सोचो कि इससे मैंने क्या सीखा। सीखा ये कि झगड़े का कारण मैं खुद ही हूं, मेरी वजह से हुआ है। और एक गोल्डन प्रिंसिपल आपको दे रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप में एक चीज पकड़ लो तो कभी झगड़ा नहीं होगा, और वो है आई एम रॉन्ग। रिलेशनशिप, आई एम रॉन्ग, गलती शायद मेरी थी। सम्मान इज गुड, सम्मान एक अलग बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट। पर यहां पर हम एक अलग रीति से इसको सोच रहे हैं कि जैसे ही मुझे पता चलता है मैं गलत हूं, तो अब नेक्स्ट प्रश्न है क्यों गलत हूं। नाउ यू एनालाइज, कहां गलत हूं, नाउ यू एनालाइज इसके लिए। नहीं तो हम जब ये सोचते हैं कि मैं राइट हूं, नो एनालिसिस। जब मैं राइट हूं तो आई डू एनालाइज, आई एम ऑलरेडी राइट, यू आर रॉन्ग, आई डोंट एनालाइज। बट इफ आई से आई एम रॉन्ग, नाउ द ईगो इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस आई एम रॉन्ग। ईगो कहेगा क्यों, कहां, कैसे, फिर इसके उत्तर आएंगे, और उसके उत्तरों में भी एक कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। देयर इज दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज रॉन्ग। ठीक है, तो न्यू लर्निंग। उसके बाद में 15th, ऑप्टिमिज्म, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म। हर वर्ड सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो है, हर वर्स्ट सिचुएशन। जीवन में ऐसी सिचुएशंस आई कि हमने देखा कि उसमें फिर भी कौन सी पॉजिटिव पॉइंट है। कोई कहता है कि 5 साल पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, वी वर वेरी गुड। 5 साल में ना सारा गड़बड़ चालू हो गई, एडिक्शंस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया, और अभी हम गिर गए। गिरे नहीं हो, अभी तुम्हारे पास गिरने का अनुभव है, दिस इज अ प्लस पॉइंट। नाउ यू हैव गॉट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑल्सो, पहले जो नहीं था, सो दैट्स ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। एक पिताजी होते हैं, उसके 2 बेटे होते हैं, एक जो होता है वो पेसिमिस्टिक होता है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिज्म वाला होता है वो हर चीज में पॉजिटिव ढूंढता है, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको कुछ भी दे दो वो नेगेटिव ही ढूंढता है। एक बार पिताजी, उन दोनों का बर्थडे होता है जुड़वा, तो जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाला, जो नेगेटिव वाला होता है उसके कमरे को पूरा फूलों से सजा देते हैं, इत्र, सुगंध, सब कुछ, गुब्बारे। वो आता है तो देखता है, कहता है कूल, क्या फायदा, शाम तक तो मुरझा जाएंगे ये गुब्बारे, व्हाट इज द यूज, ये तो फूट जाएंगे। ये सुगंध, खिड़की खोल दो थोड़ी देर से दुर्गंध आ जाएगी, सब व्यर्थ है, वेस्ट है सब ये। और जो दूसरा बेटा होता है पॉजिटिव वाला, तो उसके पिताजी क्या करते हैं, घोड़े घोड़े की लीद जो होती है ना, स्टूल, वो पूरा कमरा उससे भर देते हैं दुर्गंध से। और पिताजी आके देखते थोड़ी देर के बाद, तो वो जो बेटा है वो खुशी से झूम रहा है और इधर उधर कूद रहा है, वो घोड़े की लीद जो है ना। तो पिताजी पूछते तुम क्या कर रहे हो, कहते लीद है तो जरूर घोड़ा कहीं ना कहीं होगा, आई एम सर्चिंग द हॉर्स। सो इन द वर्स्ट सिचुएशन ही स्टिल पॉजिटिव। वर्स्ट सिचुएशन है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये मेरे साथ इतना बुरा हो गया, सब लोग इतने बुरे हैं, एक एक को चुन चुन के मैं देख लूंगी। अंदर से कभी ना कभी ये विचार तो आता है, ये सब जो है ना मिले हुए ये मेरे खिलाफ साजिश है, ऐसा व्यक्ति सोचता है पर बोलता नहीं है, अंदर सोचता है बस। बट यू सर्च सर्च तो यू विल फाइंड, पॉजिटिव कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। एंड लास्ट पेशेंस, 16th पॉइंट, पेशेंस। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए वो तुरंत ठीक हो जाए ऐसा नहीं होगा, कई बार टाइम लगता है। दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया ना, कई बार टाइम लगता है उसको ठीक होने के लिए। खाली लक्ष्य ये रखो कि नया झगड़ा ना क्रिएट हो, जितने हो गए झगड़े दैट्स ओके, फर्दर झगड़े ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा झगड़े होंगे उतनी ज्यादा निगेटिविटी होगी। और कई बार झगड़े सुलझाने की मेथड बैठ कर सॉल्व करना नहीं होता है, कई बार होता है डिस्टेंसिंग, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए, गिव दैट पर्सन स्पेस। थोड़ा दूर हो जाएंगे ना तो अपने आप अपनी गलती रियलाइज होगी दो व्यक्तियों कि मेरी गलती है। तो ऐसी ये टोटल 16 पॉइंट्स है, फिर से रिवाइज करते हैं। ए फॉर अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे कर दो, मान लो कि ठीक है तुम राइट मैं रॉन्ग, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, किसी भी जहां पर भी आपका बॉस है वहां दो रूल है, रूल नंबर वन बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर वन समझ में आ गया सबको, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर टू, यदि बॉस गलत है तो, इफ बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर वन। ये रूल बोलना मत, ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट एंड इफ बॉस इज रॉन्ग फॉलो रूल नंबर वन, सिंपल, दोनों मिल गया ना। ए फॉर अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बी फॉर बी काम, हर सिचुएशन में काम रहना। इसका एक छोटा सा 2 मिनट्स का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके बाद। सी फॉर कॉम्प्रोमाइज, तो मुझसे माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगी, ये है कॉम्प्रोमाइज। ऐसा वाला नहीं है। डी फॉर डिफरेंसेस, हर व्यक्ति हमसे अलग है, दूसरे कल्चर और बैकग्राउंड से आया है, गरीब परिवार से आया है, वहां पर ये सब चीजें उसको सिखाई नहीं गई है मैनर्स की, पर वो सीखेगा। हम हाई कल्चर फैमिली से आए, हमको ये सब पता है, उसको नहीं पता, क्या कर सकते, वो ही विल लर्न इट। डी ई फॉर इमोशनल क्वेश्चन, दूसरों के इमोशंस की कदर करना, उसको समझने की कोशिश करना। एफ फॉर फॉरगिव एंड अपोलोजाइज, जहां हो सके माफ कर दो और जहां हो सके माफी मांग लो, जीवन आसान हो जाएगा। जी फॉर ग्रेटिट्यूड, सबके लिए धन्यवाद, अहोभाव, सभी के लिए, जिसने भी मुझे मदद की है आज तक बचपन से अब तक, सबके लिए धन्यवाद। एच उसके बाद में जी, एच फॉर HSP, highly sensitive personality, नहीं बनना है छुई मुई, फीलिंग देवी। फीलिंग देवी कौन कौन है इधर, फीलिंग देवी और है ए पीछे मत देखना, फीलिंग देवी और फीलिंग देव, फीलिंग देव ये नहीं होते भाइयों, नहीं होते फीलिंग, वो हर्ट करते हैं दूसरों को, होते नहीं कभी, होते अंदर से होते हैं, बाहर से आंसू नहीं आते, अंदर से रोते हैं। एच, एच के बाद में आई, आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन, खुद की चेकिंग, सेल्फ चेकिंग करनी है कहां गलती हुई। जे फॉर जोक्स, अच्छे अच्छे जोक्स का भी स्टॉक चाहिए अकेले में रोने हंसने के लिए, ठीक है। अगला के, एक बच गया के इज कर्मा फिलोसॉफी, कर्मा फिलोसॉफी उसको भी थोड़ा समझना है, उसके लिए आप थोड़े लेक्चर सुनने पड़ेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत डीपली कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, एल एल फॉर लेट गो, छोड़ दो, पकड़ के नहीं रहो, हो गया बात गई रात गई, छोड़ दो उसको। एल एम एम फॉर मैनेजमेंट स्ट्रेस, अपना इसका तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि मेरे जो स्ट्रेस हो गया आज दिन भर में क्या करूं, कैसे इसको रिलीज करूं, कोई तो मेथड हमारे पास खुद ही ढूंढनी पड़ेगी आपको। कुछ तो करो, खेलने जाओ, कुछ करो, स्केटिंग करो, गार्डनिंग करो, कुछ भी करो पर करो, नहीं तो ये प्रेशर कुकर बन जाएगा एक दिन, ठीक है ना। उसके बाद एंड न्यू लर्निंग्स, उसके बाद ऑप्टिमिज्म, वर्स्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव छिपा है, एंड लास्ट पी पेशेंस, इटर्नल पेशेंस इज नीडेड, धैर्य को खोना नहीं है। एक कोई भी भाई इधर से आ जाए, एक वन स्टूडेंट कम ऑन द स्टेज, आ जाओ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एंड वन गर्ल फ्रॉम दिस साइड, स्टूडेंट फ्रॉम दिस साइड, आ जाओ। आप यहां पे एक नजर घुमाओ, इस पूरे हॉल में क्या क्या है एक बार देख लो, किसी का नाम नहीं लेना, जैसे स्टूडेंट है, माइक है, ये मूर्ति है, समथिंग लाइक दैट, सी एवरीथिंग वंस, पूरा घूम के, यहाँ कुछ प्राइज है, सब कुछ देख लो एक बार, ठीक है। क्लोज द आईज, अंदर ही अंदर याद करो क्या क्या देखा। यस, आपका नाम जितेंद्र, बताओ तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या है प्रेजेंट, देखो देखो, हाँ बोलो, जोर से बोलो, पर्दे, माइक, कुर्सी, कैमरा, अभी नहीं देखना है उधर अभी देखने, अभी नीचे देख के बोलो, पहले ऐसे मेरी तरफ देख के बोलो, क्या क्या देखा, और बोतल,
माला,
माला, फूल,
स्टैंड,
स्टैंड, ठीक है। आप मेरी लुक एट मी एंड सी व्हाट यू हैव सीन, हाँ, पर्दे, और मोर, लैपटॉप, स्टूडेंट्स नहीं देखे, स्टूडेंट, टीचर्स, और
कैमरा,
कैमरा हो गया। इन दोनों ने जो कुछ बताया इसके अलावा और क्या क्या है, और आप भी तो हो, यू आर ऑल्सो देयर, यू हैव फॉरगॉटन योरसेल्फ, सब देखा एक को छोड़कर अपने आप को, यही जीवन की कला है, दूसरों को नहीं देखना है, किसको देखना है, अपने आप को देखना है। और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट, बैठ जाओ, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे ऐसे, ये एक्सपेरिमेंट आपको तब करना है जब बहुत टेंशन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और आप अभी एंग्री होने ही वाले हो, किसी को डांटने ही वाले हो, उसको बस बुलाया है, कम टू द केबिन एंड यू आर रेडी टू फायर, और यू आर अबाउट टू गेट फायर्ड, उस टाइम पे नाउ हार्ट बीट तेज चल रही है, उस टाइम पे क्या करना है वो एक एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं, आंखें बंद, आईज क्लोज्ड, आईज क्लोज्ड, हाथ एक कोई भी पोजीशन पे रख लो, पर रिलैक्स हो जाओ, पीछे रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, आईज क्लोज्ड, ऑल ऑफ यू आईज क्लोज्ड, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। ये एक्सपेरिमेंट तब करना है जब एक्सट्रीम इमरजेंसी है और कोई भय की सिचुएशन है, तब गो टू द टॉप ऑफ द हेड, अपने सिर के सिरे के ऊपर जाना है, देखना है कौन से सेंसेशन है वहां पर, फिर चेहरे की ओर आ जाओ, ऑब्जर्व करो सेंसेशन को, आईज, नोज, चिक्स, लिप्स, ईयर्स, सेंसेशन अर्थात कहीं इचिंग है, कहीं पेन है, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव है, कहीं धूजन, कहीं सूजन, कहीं टिंगलिंग, कहीं नमनेस, कुछ ना कुछ हो रहा है, हर प्रतिपल हमारे पूरे चेहरे पर, शरीर पर कुछ ना कुछ संवेदना है, फील दोज सेंसेशंस, नेक, जो जो अंग का हम नाम लेंगे अपने मन को उस अंग पर घुमाना है. सी योर नेक. राइट आर्म, राइट शोल्डर, राइट आर्म, एल्बो, फोर आर्म, फिंगर्स, पाम. पूरा निरीक्षण करो ऊपर से नीचे तक राइट आर्म का और देखो कौन से सेंसेशन से, प्लेजरेबल अनप्लेजरेबल, सुखद है दुखद है, किस तरह के सेंसेशन से वहां पर. डिटैच्ड होके केवल देखते रहो, नो प्रतिक्रिया नो रिएक्शन. हो सकता है कहीं पेन हो रहा है, उस पेन को साक्षी होकर देखना है. नाउ कम टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट फोरआर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट फोरआर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट हैंड. ऊपर से निरीक्षण मन को घुमाएंगे. मूव योर माइंड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ कम टू द चेस्ट, चेस्ट को देखेंगे मन की आंखों से. बीट्स, पाल्पिटेशन, एवरीथिंग जस्ट ऑब्जर्व. राइट साइड, लेफ्ट साइड, एब्डोमेन, होल एब्डोमेन, ऑब्जर्व. पीठ और कमर, ऑब्जर्व किस तरह की संवेदनाएं हैं. जलन है, दर्द है, तनाव है, खिंचाव है, खुजली है, क्या है, केवल देखना है बिना किसी प्रतिक्रिया के. नाउ लेफ्ट लेग, लेफ्ट थाइस, लेफ्ट नी, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट फीट, एंटायर लेफ्ट लेग. ऊपर से नीचे तक देखें. राइट लेग ऊपर से नीचे तक, अपने मन को घुमाना है. कहीं स्पाजम है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, कहीं ट्विचिंग है, कुछ तो हो रहा है, प्रतिपल कुछ हो रहा है. अब शरीर के उन अंगों से अपने मन को घुमाएंगे जो छूट गए. नॉट द सिंगल बॉडी पार्ट शुड रिमेन. अब फिर से एक बार सिर के सिरे की ओर आएंगे, राउंड नंबर टू. ऊपर से नीचे तक फिर से शरीर का निरीक्षण, बॉडी इंस्पेक्शन, बॉडी स्कैनिंग, फ्रॉम टॉप टिल बॉटम. स्कैन करो बॉडी को फास्ट थोड़ा नीचे तक. राउंड नंबर थ्री, अभी एक साथ स्कैन करेंगे पूरा चेहरा, दोनों शोल्डर्स, चेस्ट, एब्डोमेन, दोनों लेग्स और नीचे तक. स्टार्ट. अभी अपनी ब्रेथ की ओर जाएंगे, ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व ब्रीदिंग. Breath is coming in, breath is going out. Just observe the top of the lips and below the nostrils की जो area है उस पर focus करो mind को. Breath is coming, breath is going out. Breath is coming, breath is going out. Just observe as a detached observer. That's it. Om Shanti. Open the eyes. Relax हो गए. एनी सिचुएशन आ गई स्ट्रेसफुल, क्या करना है, बॉडी स्कैन. आंखें बंद, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बॉडी को स्कैन करते जाना है. इधर क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, वहां कुछ हो रहा है. जस्ट ऑब्जर्व द सेंसेशंस. सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते करते माइंड शांत हो जाए. ओके, ओम शांति. थैंक यू.